अब दोबारा किबले की तरफ है, और आप देखिए कि यहाँ आपके जहन में भी एक सवाल आना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला बार 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 कुरान में ये तकरार क्यों ला रहे हैं किबले की तब्दीली की। तो उसकी वजह ये कि नसख का पहला मौका था, और किबले तब्दील करना कोई छोटी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यकसू होने की दावत दी जा रही है कि आप फिक्र करें और इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाया जाएगा, और लोगों के किबले तब्दील कराने कोई आसान काम नहीं। इसीलिए अब अगली आयत में 149 में फरमाया वमिन हैसू, और जहां से भी, फिर वही जुमला वमिन हैसू, मिन की जरूरत नहीं, वह हैसू खरज था ये काफी था, मिन जहां कहीं से भी। मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया था ये दो रुकू जो कल पढ़ा है और ये आज का लेसन, इसमें तकरार की हद है, लामे ताकीद बहुत है, नूने मुशद्दत बहुत है, आपको हर चीज में ऐसे लगेगा इम्फेसाइज करने वाला स्टाइल है। तो फिर कह दिया जहां से भी आप निकलेंगे, खरजता क्या है, वाहिद किसको कहा जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जहां से भी आप निकलें फवल्ली वजह का, तो फेर लें अपने चेहरे को, वल्ली क्या है, वाहिद एक बंदा फेरेगा, वजह का अपने चेहरे को किधर फेरेगा, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। तकरार है ना, 143 में बिल्कुल यही हुक्म गुजर चुका, अब यहां नबी को दोबारा लग करके फिर क्यों कह दिया, आप सीगों को समझ रहे हैं, कहीं उम्मत को है कहीं नबी को है। ये आयत आपसे अगर पूछी जाए 149 असाइनमेंट में कि यहां किसको हुक्म दिया जा रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे उम्मत मुस्लिमा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। वइन्नहु लिलहक्कु मिन रब्बिका, और बेशक ये हक है आपके रब की तरफ से। क्या हक है रब की तरफ से, किबले की तब्दीली। बनी इसराइल की किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा, यहाँ इन्नहु लिलहक कह के बता दिया कि ये हक है, ये दीन हक है, ये नबी सच्चा है, और किबले की तब्दीली ए यहूद मदीना तुम्हें बोल बोल के बता रही है कि ये नबी सच्चा है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम्हारा रब गाफिल नहीं है उससे मुकद्दस की तरह मुकम्मल करते हो। क्या पता चला इस सारी चीज के अंदर, पीछे चूके फस्तबिकुल खैरात की बात थी, तो अब कहा कि न इधर देखो न उधर देखो। अब इमेजिन करें थोड़ा सा, आप इस जुमले की खूबसूरती पर गौर कीजिएगा, सारे लोग तो बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े थे, अल्लाह ने नबी को कहा तुम अपना रुख बदलो, ये आसान काम है। देखिए ट्रेंड सेटर लिखिए इसके आगे, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। नया ट्रेंड बनाना बड़े जी गुर्दे वालों का काम होता है। लंबी कमीजें चल रही हैं और आप एक दिन छोटी कमीज पहन के चल पड़े, आम लोग तो कहेंगे आपको पता ही नहीं फैशन क्या चल रहा है, पर आप में बड़ी जरूरत है तो आप कहेंगे, और बाद में पता चलेगा जी आपने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। ट्रेंड्स बदलने बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ वाहिद के सीगे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से हुक्म किया, क्यों किया, कि आप पहले बने। फस्तबिकुल खैरात का ये कमली नमूना है, इसको पीछे से जोड़ें। हम लोगों को देखते रहते हैं, अभी तो मेरे खानदान में कोई मेरा हम ख्याल ही नहीं हुआ, अभी तो मेरे घर वालों ने खुशी से मेरी क्लास को कबूल ही नहीं किया, मेरे शौहर को मेरा हिजाब पसंद ही नहीं, वो तो मुझे प्लकिंग करने पे मजबूर करते हैं। अल्लाह कहते हैं कोई माने ना माने तुम चल पड़ो। क्याम की हालत में हो, घरों में हो, शहर में हो, मस्जिद नबवी में हो, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, किसी दूर की मस्जिद में हो, जहां भी हो, सफर में हो, परदेश में हो, हर नमाज में अब रुख सिर्फ किबले की तरफ ही होगा, दिल अल्लाह की तरफ और मुंह किबले की तरफ। पंजाबी में कहते हैं कि हथ काम वल ते दिल रब वल। बुजुर्ग खवातीन को आपने देखा होगा काम करते हुए भी जुबान से जिक्र करती रहती हैं, तब इतनी आसानियां नहीं थी कि साथ सेलफोन पे आप हैंड फ्री लगा कर तो बातें करती रहे, तो वो खाना पकाते हुए भी साथ जिक्र करती थी, कपड़े धोते हुए भी जिक्र करती थी। अल्लाह ताला यहाँ आपको मुझे यही बात बता रहे हैं कि देखो तुम लोगों को मत देखो, अल्लाह को देखो। जिधर से भी तुम निकलोगे, अगली आयत में फिर यही बात है, सफर और हजर के हुक्म है। पहला हुक्म नबी को था, दूसरा खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने वालों को था, अब दोबारा अगली ही आयत को साथ जोड़ लें तो सब पे इकट्ठी बात होगी, वमिन हैसु खरजता, और जहां से भी आप निकलें, फवल्ली वजह का शत्र अल मस्जिद हराम, तो फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। वह हैसु मा कुन तुम, और जहां कहीं तुम हो गए, कोई बताएगा आप में से क्या फर्क पड़ा आयत में? वाहिद के सीगे जमा में बदल गए, अरबी में अल्ली ये क्या था वाहिद, अब क्या रहे मा कुन तुम। बात समझ रहे हैं कि मुश्किल लग रही है? अब ये जो हुक्म है ना, ये उम्मत को है, आप आयत के साथ रहेंगे तो समझ आएगा कि हैसु मा कुंतुम में अब एकदम एक ही आयत में, अरबी में ये भी खूबसूरती होती है, चेंज होती है, एकदम साइड चेंज हो जाती है, ये अबलागत का एक अंदाज होता है। अब उम्मत को कहा गया हैसु मा कुंतुम, उम्मतियो तुम भी जहां कही हो, फवल्लू तो तुम सब फेर लो। पहले नबी को क्या कहा था, फवल्ली वाहिद, वल्लू सब फेर लो, वजूहकुम वहां क्या था वजह का, आप दोनों आयतों को ऊपर नीचे लिखकर उसको जोड़ेंगी ना तो तकाबुल समझ आएगा, वहां एक चेहरा था, यहां वजूहकुम, करना किधर है शतरा हो। क्यों करें ऐसा, सवाल पैदा होता है, इतनी तकरार से बार बार कहा जा रहा है, तो जवाब दिया ली अल्लाह। ये जो ली अल्लाह है ना, इसको हाईलाइट करें, ये तीन लफ्ज हैं, ली अन और ला, लिखे आप फिर समझ आएगा। ली का मतलब वास्ते, अन ये के ला नहीं, तो आपको अब तर्जुमे में याद करना मुश्किल लगेगा लफ्ज, नहीं ली अल्लाह ताके ना रहे, अरबी जुबान में इस तरह इख्तसार कर दिया जाता है लफ्जों में, ली अल्लाह यकून अलिन्नासी ताके ना हो लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, अलैकुम से मुराद क्या है, तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट, हुज्जतुन हुज्जत, इस एक आयत में से तीन हुक्म निकलने, इसलिए यहां पे अगर आप चाहें तो वन लिख सकते हैं। किबले की तब्दीली की तीन हिकमतें इस एक आयत में हम सीखेंगे 150 में। पहली हिकमत, हुज्जत न रहे तुम्हारे खिलाफ, हाँ मगर इल्लल्लज़ीन ज़लमू, मगर जिन लोगों ने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, किन में से, मदीना के यहूद में से, मतलब वो नहीं मानेंगे, हालांकि इतनी बड़ी हुज्जत उनको मिल गई, पीछे भी जिक्र किया कि पिछली किताबों में ये लिखा था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा, अब चूंकि खाना काबा हो गया मुसलमानों का किबला, तो ये बहुत बड़ी दलील थी मदीना के यहूद के लिए कि वो मुसलमान हो जाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाते, लेकिन इल्लल्लज़ीन ज़लमू, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, या जुल्म से क्या मुराद है, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, फला तख्शौहुम बस उनसे ना डरो, वख्शौनी और मुझसे डरो, किसको कहा जा रहा है, नबी सल्लम के साथ हमें भी कहा जा रहा है, तुम अहले किताब से ना डरो, तुम गैर मुस्लिमों से ना डरो, पीयर प्रेशर में ना आओ, सुपर पावर्स का खौफ ना रखो, सुपर सुप्रीम पावर का खौफ रखो, वख्शौनी मुझसे डरो, कौन ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए, अल्लाह की जात, सच बताएं ऐसे ही बगैर सोचे, आज बड़ी ताकतों का ज्यादा डर आता है कि अल्लाह का, उनके मुल्कों में जाना हो, उनकी इमिग्रेशन से गुजरना हो, उनकी इंटेलिजेंसिस की बात हो, उनके पासपोर्ट लेने हो, उनका डर ज्यादा है कि अल्लाह का, कहते अल्लाह की खैर है, वो तो अपना उसको बना लेंगे, इनको खुश कर दो, रंग में ढंग में चाल में नसब में हसब में हम हर चीज में खौफ रखते हैं, सांस नहीं लेते लोग खुल के, कहते नहीं कागजों में नाम ना आ जाए, नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, गाड़ियों में से सब कुरान निकाल दो, दाढ़ियां कटा दो, मोहम्मद नाम निकाल दो अपने नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजाब उतार दो, नहीं नहीं बख्शो हूँ डरो उनसे, अल्लाह कहता है बख्शो नहीं मुझसे डरो, क्योंकि वाली उतिम नेमती अलैकुम, और ताकि मैं पूरा कर दूं अपनी नेमत तुम पर, या उतिम नेमती से क्या मुराद है, फाइनल किबला खाना काबा को बना दिया, और सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, नेमत की तकमील क्या थी कि उम्मत मुस्लिमा पे वो हजरत आदम के दौर से चला हुआ नबूवत का काफला आके रुक गया। बहुत सारे इंटरफेस आए बीच में, बहुत सारे इंटरसेक्शन आए, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की गाड़ी अपने फाइनल स्टेशन पे खड़ी हो गई। हम मुसलमान उम्मते मुस्लिमा के लोग इस्लाम की गाड़ी की आखिरी बोगी हैं। बोगी को क्या कहते हैं? कैबिन, लास्ट कैबिन ऑफ द ट्रेन ऑफ इस्लाम। कौन है? हम मुसलमान। वलियुतिम नेमती अलैकुम, ताकि मैं तुम पे अपनी नेमत पूरी करूं, वलअल्लकुम तख्तदून, और ताकि तुम हिदायत पाओ। पिछली आयत में सफ़र और हज़र, यानी सफ़र में है या आम के, आम की हालत है उसके हुक्म बयान हुए, जहाँ भी है वहाँ करो। अब दोबारा इस आयत में दोहराया जा रहा है, एआदा हो रहा है। इसको कहते हैं ताकीद, मजीद ताकीद। क्यों? क्योंकि हुक्म बहुत बड़ा है ना। आप देखिए कि कुरान पाक तो एक बलागत का मौजज़ा है, एजाज है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कलाम है, जामियत है। तो ये बार बार क्यों किबले की बातें हो रही हैं, तकरार? लेकिन थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह शरह सदर होगा कि ये तकरार नहीं है। तो वजह क्या है तकरार की? नंबर एक, कुरान आयन या कानून की किताब नहीं है, ये लॉ की बुक नहीं है कि जिसमें डूज एंड डोंट्स बता दिए, बल्कि ये किताबे हिदायत है। और हिदायत हुक्म देने से नहीं मिल जाती, दिलों में हुक्म को जमाना पड़ता है, तबीयतों को माइल किया जाता है उस हुक्म की तरफ। अक्ल में बात आ भी जाए ना तो दिल नहीं कबूल करता। मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ कि हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, है ना, सबको पता है, मारूफ बात है। कोई हिंदू लड़की इस्लाम में आ जाए या कोई मर्द मुसलमान हो जाए, अब खा सकता है ना, लेकिन उसको अपना दिल इस तरफ लाते हुए टाइम लगेगा, ये मुराद है। तो क्यों बार बार हुक्म है? ताकि बार बार सुन सुन के तबीयतें माइल हो जाएं। अकल तो मुतमईन हो गई है, अब दिल भी कबूल कर ले। यही कुरान की खूबसूरती है। नमाज का जिक्र बार बार आता है, भाई बता तो दिया कि नमाज पढ़ो फर्ज हो गई, क्या आपको अपने बच्चों को एक दफा कहने से काफी होता है? हर नमाज में फिर नहीं चीखना पड़ता? बार बार सुन के बंदा फिर कबूल कर लेता है, ये एक वजह समझ आ जाती है। दूसरी बात देखिए कि इसमें जज्बात थे, कौन किधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा, इसके साथ इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। आप इतनी मुश्किल, ये जो एफिलिएशंस हैं या ये लगाव होता है एक किबले की तरफ या एक जगह के साथ, उसको बदलने में टाइम लगता है। मुश्रिकीने मक्का भी अपने तरीकों पे थे, उनके अपने कबीलों के अपने बुत थे, वो मक्का में रहते हुए भी बुत पूज रहे थे उस घर में रख के। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हिकमतें बताकर ये बता दिया, तीन बड़ी हिकमतें हैं अगर आप इस आयत में देखें ना। तो पहली बात, ली अल्लाह के लफ्ज को हाईलाइट कर लीजिए, ली अल्लाह यकून अलिन्नासि अलैकुम हुज्जा, इतमाम हुज्जत। अल्लाह ने बैतुल्ला या मस्जिद हराम को किबला बनाकर यहूद को अब एक हुज्जत दे दी। क्या बोलो, तुम्हारी किताबों में था ना कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा, तो अब बोलो आप क्यों नहीं मानते? बात वाज़े, यानी उनको पूछा जा रहा है व्हाट्स नाउ, अब क्या मसला है तुम्हारा? जैसे आप अपने बच्चे की कोई बात पे चिढ़ जाते हैं ना, वो जिद ही कर रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, एक बात अखीर आप उसको, वो कहते हैं चलो पहनो यही कपड़े, वो कहते हैं मैंने ये टोपी नहीं पहननी, ये पहननी है, आप कहते हैं वो नहीं पहनो, वो नहीं है, ये है, वो है, दिस एंड दैट, अखीर आप जिद हो जाते हैं। आप कहते हैं ये नहीं मानेगा, ये जिद में आ गया, आप कहते हैं लो पकड़ो, अब क्यों नहीं पहन रहे? ये अंदाज है कि अब तुम्हें एक ही तकरार लगाई है, मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं माना, मैं ना मानू तो अब लो पकड़ो इस किबले की वजह से इसको मानो। तो पहली वजह हुज्जत, इतमाम हुज्जत हो गया। दूसरी बात, इतमाम नेमत, वाली उतिम नेमत अलैकुम, अल्लाह ताला ने नेमत पूरी की मुसलमानों पे। और हकीकत है कि इल्म और किरदार की यही पुख्तगी होती है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देता है। दीन पूरा हो रहा है, तुम्हें एक फाइनल वर्जन मिल रहा है इस्लाम का। आप इसको यूं समझें, आपको चॉइस मिले कि आईफोन लेना है तो कौन सा लेंगे? कितने लोग हैं जो आईफोन 3 लेंगे? 4, 5, 6, 6S, 7 लेंगे आप। क्यों? नेमत पूरी हो गई। आप कहते लेटेस्ट ब्रांडेड, یہ تمام نعمت کیا ہے کہ تمہیں تو لیٹسٹ خوبصورت دین دیا جا رہا ہے, کمپلیٹ ورژن آف اسلام ہے, تو وہ کیوں چھوڑ رہے ہو اور اپنا اتنے 100 سال پرانا دین لے رہے ہو؟ اور صحابہ کو بھی بتا دیا تھا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, اے صحابہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی, آج کافر قوتیں تم مسلمانوں سے مایوس ہو چکی ہیں, مسلمانوں سر اٹھاؤ. یقین کریں یہ آیتیں پڑھ کے بھی اگر ہمارا خون نہیں گرم ہو رہا نا تو ہم بہت ٹھنڈے ہیں, ہم بہت کولڈ ہیں, یا ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, یا ہم نے سوچ ہی لیا کہ ماننی کوئی نہیں. لیکن اللہ مسلمانوں کے سر پہ تاج رکھتا ہے کہ یو ہیو دا لیٹسٹ ورژن آف اسلام, وہ سر بھی تو جس پہ تاج ٹک سکے. تاج کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, جب سر یوں ہلتے ہیں نا نو نو, تو وہ سر پہ تاج نہیں رہتے. اللہ آپ کو مجھے عزت دے رہا ہے, نعمت کی تکمیل. کسی کو آپ تھوڑی سی چیز دے دیں اور اپنے جس بچے کو پوری چیز لا کے پکڑائیں اس کو تو خوش ہونا چاہیے. ہم مسلمان, وی می آئی ایم, میں, مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کمپلیٹ ریلیجن دیا ہے, پھر ہم روتے دھوتے. میں کہتی مسلمان کے بس رونے کا وقت نہیں ہے, مایوسیوں کا وقت نہیں ہے. اور تیسری حکمت ہے لعلکم تہتدون, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پوری ہدایت سے نوازے تو پھر تمہیں اس قبلے سے اپنی وابستگی کو مکمل کرنا ہوگا, ملت ابراہیمی کو اپنانا پڑے گا. یہ گھر خانہ کعبہ یہ بنیاد ہے انقلاب کی. دیکھیں نا پیچھے اسی گھر کو بنانے والے کا ذکر ہوا, ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. اس گھر کو بناتے ہوئے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی تھی, وہاں شرک کے باوجود بھی اللہ کی توحید اور بندگی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں. اب جو بندہ حقیقت میں اس گھر میں چلا جاتا ہے اللہ دل بدل دیتا ہے. مان جاؤ, ضد نہ کرو, چڑ نہ دکھاؤ. اگر آپ ساری بات جو میں نے ابھی تک کہی ہے نا اس کو خلاصے میں لینا چاہے نا, تو اللہ سمجھا رہا ہے مسلمانوں کو, خوشیاں مناؤ, اللہ نے تمہیں چن لیا. کذالک جعلناکم امتاً وسطا, تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا, تمہیں ادھوری نہیں پوری نعمت دی ہے, تو تم پوری نعمت پا کے ادھوری اطاعت کرو گے, پھر تم دوسروں سے لوگے. دیکھیے آپ کے اپنے گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے, اچھی بلی, زیادہ اچھی قیمت, اچھی خوبصورت, اور آپ ہمسائے کی پرانی ٹوٹی پھوٹی چیز بورو کر رہے ہیں. عقل مندی ہے بیوقوفی, اپنا بستر نیا چھوڑ کر کسی کا سمیلی بستر لے کر اس پہ سو رہے ہیں, عقل مندی کی بیوقوفی ہے. تو آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ, اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا, لیکن آج ہم غیروں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. یہاں تو ہنس کووں کی چال چل رہے ہیں. اللہ نے تمہیں عزت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, یہ اب آپ کا میرا اپنا کام ہے. اپنے بچوں میں کیا کانفیڈنس لائیں, ہمارے بچے کیا پہن کے باہر جانا پسند کرتے ہیں, ہمارا رنگ کیا باہر صبغت اللہ ہے یا معاشرے کا رنگ. ان کے پھنسے ہوئے کپڑے پہن کر ہم خوش ہوتے ہیں, جسم کا ایک ایک جوڑ کوئی دیکھ لے ہم بڑے خوش ہیں. ذرا ڈھیلا کپڑا پہن لے ہمیں خود ہی شرم آ رہی ہوتی کہ میں زیادہ ہی عجیب نہیں لگ رہی. اب کپڑے پہن کے باہر جاؤ اور پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کتنی سمارٹ ہیں. کیا ہمارا آج حال ہے؟ سر شرم سے جھکتا ہے اپنے حالات کو دیکھ کر. اپنے آپ کو ہم چیک کریں. یہاں پہ ایک قسم کا قبلے کی تبدیلی کا جو معاملہ تھا نا وہ پورا کیا. مسلمانوں کو ابھی تک جو بات کی اس میں سے یہ ملا, جو شخص مرکز عبادت کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتی ہوں, جو بندہ اپنے محسنوں کا حق نہیں دے گا نا وہ کبھی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا. ماں باپ ہمارے محسن ہوتے ہیں, جو بچہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا نا وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا. اسی طرح مرکز عبادت کعبہ تھا, اللہ نے ادھر ہمیں جوڑا. اگر آج ہماری وفاداریاں اس کے ساتھ نہیں ہیں تو کہیں بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبلہ استقامت کا سمبل ہے. اب مسلمان ادھر ادھر نہیں بھڑکتا. آج تک الحمدللہ کوئی ایسا فرقہ نہیں آیا مسلمانوں میں جو یہ کہہ دے نہیں بیت اللہ نہیں چاہیے, بیت المقدس کی طرف منہ کروں گا, कोई कहता है हाँ ये अलग बात है जिंदगी में हमारे किबले फर्क हैं, शादियों में हमारा किबला दिल्ली और लाइफस्टाइल में हमारा किबला न्यूयॉर्क और किचन बनाने में हमारा किबला इटालियन, वो है हमारे किबले बहुत सारे, रस्म और रिवाज के किबले हिंदवाना और पहनने ओढ़ने के तौर तरीके हमारे वेस्टर्नाइज्ड, लेकिन नमाज में हम सारे किबले की तरफ ही मुँह करते हैं। ऐसे ही है ना, कोई आप ऐसा मुसलमान क्या गुजरा भी नहीं देखेंगे कि जो किबले को छोड़ के दूसरी तरफ मुँह करे। अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे एक चीज़ पे जमने की बात करते हैं, और यहाँ देखिए इस्लाम को नेमत कहा जा रहा है, हिदायत को नेमत कहा जा रहा है। दिन में 5 बार इत्तेहाद की दावत दी जाती है उम्मत को, जुड़ जाओ, यूनाइट हो जाओ, अखुवा आ जाए तुम्हारे अंदर। मकासद एक होते हैं ना, फिर बंदा जुड़ता है। आप सारे यहाँ क्यों आके बैठे हुए हैं, आप सबका मकसद एक है। आज का सबक आप सब ने सुनना था, आप आगे आप यहाँ आते पता चलता आज ये सबक तो नहीं, आज तो कोई और है, तो हो सकता है आपको आके गलती लगती, आप उठ के चले जाते। मकसद जोड़ता है लोगों को, लाइक माइंडेड पीपल को उम्मत कहते हैं। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, किबले के तनाजर में ये सारी बातें कर कर आके हुज्जते तमाम करके अपने खौफ की दावत दे के दूसरों के डर से निकाल कर अब हमें एक नेमत की तस्कीर करवा रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि अल्लाह का डर बंदे को क्या देता है और बंदों का डर बंदे को क्या देता है? अल्लाह का डर बंदों को क्या देता है? नेकियों की रगबत आती है, फस्तबिकुल खैरात। बंदों का डर बंदे को क्या देता है? बेचैनी, खौफ, कुलक और इस्तराब। हत्ता कि आप देखते हैं कि बंदा दूसरों से डरने लग जाता है और अल्लाह से नहीं डरता। आप मैं अपने आप से पूछें, चलें खुद को पूछिए, आई एम, क्या मैं लोगों से डरती हूँ? ये सवाल है आपका, आपने लिखना है, इसका जवाब अपने आप से पूछना है। मुझे लोगों से डर लगता है? पीयर प्रेशर है। हम तो ये 4 कपड़ों को ही एक बुनियाद बना लेते हैं लोगों के डर की, लोग क्या कहेंगे। कितनी दफ़ा ये जुमला बोलती हूँ दिन में, लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का भी तो डर आना ही चाहिए ना, ये जुमला तो नहीं बोलती। तो अल्लाह का खौफ आएगा तो बुराइयों से रुकेंगे, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, मुसीबतों से निजात होगी, कल जहन्नुम से इंशाल्लाह बचेंगे, अल्लाह की रहमत और उसकी रज़ा मिलेगी। और अगर बंदों का खौफ हुआ तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और अल्लाह का खौफ आता है ना तो बंदे को मौत से डर नहीं लगता, मौत से मोहब्बत हो जाती है, गौर व फिक्र आता है, कायनात पे गौर करने को दिल करता है, गुनाहों को याद करते हैं तौबा करने को दिल करता है, बुरा अंजाम अपना याद आता है, बंदा ठीक हो जाता है। तो लिहाजा अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी नेमत है। और आपको पता है ना कि अल्लाह ताला जब एक बंदे को अपना खौफ देता है तो आखिरी दर्जा क्या होगा उसको, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून की नवीद देता है। आप एक अल्लाह का डर पैदा करें, यकीन करें आप आज़ाद होंगे। यहाँ बैठे बैठे आपको लगेगा मैं बहुत सारी जकड़बंदियों से आज़ाद हो गई, लिबरेशन। मैंने ऐसे लोगों को देखा है खौफ सदा, सास से डरते, नन से डरते, बावर से डरते, पता नहीं किस किस से डरते, कोई जादू ना कर दे उससे डरना, फलां से डरना। आप सब कह दें मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ। जब आप अल्लाह से डरेंगे ना, अल्लाह ताला सब के दिल में आपका डर डाल देगा, खौफ डाल देगा। तो फरमाया कमार सलना फीकुम रसूलन, जैसे कि हमने भेजा तुम्हारे बीच में रसूल। जी अब ये बताइए ये कमा क्या है? हर्फ तशबीह है वैसे अरबी में अगर देखें, लेकिन तशबीह में किसी चीज़ से देते हैं ना, आप कहते हैं ये बच्चा उससे मिलता है, तो किससे मिलता है? सवाल समझ आए? कमार सलना फीकुम रसूलन, जैसे कि हमने तुम्हारे बीच में एक रसूल भेजा, मिन हुम यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम में से ही था और पढ़ता था तुम पे हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करता था, और वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता था, वयुअल्लिकुम मालम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो सिखाता था जो तुम नहीं जानते थे। तो सवाल पैदा होता है कि कमा क्या है? जी आप देखिए कि अगर हम इस एक आयत जो यहाँ आई कमा में, इससे थोड़ा सा पीछे देखें तो हम पढ़ रहे हैं किबले की तब्दीली, उससे थोड़ा जिसको आप कहते हैं कि गुज़श्ता से पेवस्ता, रुकू में किसका जिक्र था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की दुआ की, रब्बना वबस फीहिम रसूला मिनहुम, याद है आपको वो दुआ की थी ना। उसके बाद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। पारे के शुरू में एक आयत आपने पढ़ी, वो कजाली का जाल ना को मम्मतम वसता, तो इससे मुराद क्या है कि जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पे अल्लाह ने उस नबी को मबूस किया जिसमें से एक उम्मत बन के तुम निकले उम्मत वसत की सूरत में, इसी तरह कमार सल नफी कुम रसूल अमिन को। बात समझ गए? जैसे कोई आप पे कोई एहसान करे तो कोई कहेगा हाँ मैंने आप पे वैसे ही एहसान किया जैसे मैंने पहले भी ये किया था। एहसानात की बात है, उम्मत वसत मनसब क्यादत इमामत। अल्लाह ताला ने इब्राहिम की उस दुआ का तस्करा कर दिया कि जिसने इस उम्मत का किबला बनाया आज तुमने उसी को बिखेर के रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी? अब यहाँ आपको एक बड़ा खूबसूरत रब दिखेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना, उस दुआ में यतलू अलैकुम आयातीना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम अल किताब वल हिकमा, इस तरतीब में कुछ फ़र्क है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में तज़किए का लफ्ज़ आखिर में था, आप बाद में जाके पीछे देखिएगा। तीन दफ़ा ये दुआ आएगी, अभी आ गई सूरह आल इमरान में आएगी, सूरह जुमा में। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की इसलाह कर दी। वहाँ क्या था, पहले कुरान पढ़ेंगे फिर तर्जमा पढ़ेंगे फिर मानी समझेंगे हिकमत आएगी फिर तज़किया होगा, यहाँ ऑपोजिट है, तज़किया पहले है क्योंकि तज़किया इखलास का नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहाँ खड़े होकर दुआ मांगी थी तो उनके पास बच्चा कौन सा था? इस्माइल। तो इस्माइल कैसा बच्चा था जिसका पहले ही तज़किया हुआ था? सूरत स्वाद में जाके पढ़ेंगे ना कि वो बच्चा जो पहले ही बाप की हुक्म पे जान देने को तैयार है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं था पता कि मेरी नस्ल में आगे औलादें इतनी बिगड़ जाएंगी कि पहले तज़किए की ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल कुछ भी वजह हो, आपके मेरे लिए इसमें सिंपल सी बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चार काम किए, तालीम भी दी तज़किया भी किया हिकमत भी सिखाई और युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। ये क्या, चले पीछे तज़किया और किताब की तो थोड़ी सी बात हमने कर ही ली थी, ये सिखाया जो तुम्हें नहीं पता वो क्या है? ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने उस उम्मत को सिखा दी जिसके पास कोई नबी नहीं आया था। किबले की तब्दीली की हिदायात में अब दीनी अहकाम सिखाए जा रहे हैं। अल्लाह ने उस अनपढ़ उम्मत को, उम्मी कौम को एक नबी दिया जिसने उनको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। क्या आता था अरबों को? बकरियां चरानी और ऊँटों का दूध निकालना और कायनात के अंदर गौर व फिक्र। अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको एक ऐसा प्यारा नबी दिया। आप देखिए कि यहाँ रसूल से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रसूल के फ़राइज़ क्या हैं? फिर तिलावत, तालीम, हिकमत की तालीम और तज़किया। जब तक एजुकेशनल सिस्टम में ये चार चीज़ें नहीं शामिल होंगी ना, चेंज नहीं आएगी। आज देखिए यहाँ नोट कीजिए, ये इल्मुल वही की बातें हैं। एक दुनियावी तालीम होती है ना, एक्वायर्ड नॉलेज, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं पहली दूसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ए लेवल ओ लेवल, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन नबी का काम होता है कि वो इल्मुल वही सिखाए। अब जब वही सिखाए, मसल दीनी इदारा, जैसे हमारा भी ये इदारा है माशाल्लाह, पाकिस्तान में कोई मदरसा, सऊदी अरब की कोई यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब का नसाब इन चार चीज़ों पे मबनी होना चाहिए। आप यहाँ मेरे पास आते हैं ना तो मैं आपको अपने ऊपर ही लेती हूँ, मैं आपको खूब तर्जमे पे गौर कराऊँ, ग्रामर की गुतियाँ सुलझाऊँ, शाने नजूल बताऊँ, इस आयत के अंदर ये नहीं तो वो नहीं, ये सब बताऊँ, और उसके बाद ये ना बताऊँ कि इसमें से आपने क्या करना है, तज़किया ना हो आपका तो क्या आपको फ़ायदा होगा? आज लोग इल्म सीखकर और सख्त हो जाते हैं, आपको पता है, तकबर आने लगता है, बढ़ाई का एहसास चलता है। बेहतरीन इदारा और बेहतरीन उस्ताद वो है जिसकी बात में ये चारों चीज़ें हों। सिर्फ तज़किया तज़किया ही ना हो फिर तो आम दर्स में और क्लास में फ़र्क क्या रह जाए? मुझे यकीन है 100% कि जो बातें मैं आपको बताती हूँ इसमें से आधी बातें आप में से आधों को समझ ही नहीं आती, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना। एक को भी समझ आ रही होंगी ना इस क्लास में, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने युअल्लिमुकुम भी किया था, और युअल्लिमुकुमुल किताब में फिर कुरान और सुन्नत, कौन सी नेकी कितनी कब करनी है। पीछे आपको याद है हजरत इब्राहिम ने क्या दुआ की थी, अरिना मनासिकना, ए अल्लाह हमें तरीका इबादत सिखा। नेकी का तरीका अगर हर बंदा अपनी अकल से ही याद कर लेता तो फिर इस नबी की जरूरत नहीं थी। कल हमारा अटलांटा में एक कोर्स था, उसकी एक सेलिब्रेशन थी परसों, तो वहाँ अरब टीचर आती हैं, तजवीद सिखाती हैं वहाँ क्लास को, जैसे आपका ये कोर्स है तो वंस अ वीक वो आके तजवीद सिखाती हैं। दुआ करें आपके लिए भी इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा अरेंज होगा। तो उनको मौका दिया, तो उन्होंने 5-6 मिनट लेने थे, उसमें उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि तजवीद सीख रहे हैं या आप कुरान सीख रहे हैं, इट्स नॉट विद बुक्स, इट्स नॉट विद द नोट्स, इट्स विद टीचर। उन्होंने कहा जो तजवीद की किताबें खरीद लेते हैं, पैसे ज़ाया करें, आप रूल्स रेगुलेशन खोल लें, नेट्स की वेबसाइट चॉइस कर ले, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको अपने तजवीद सही करनी है, आपको टीचर के साथ बैठना पड़ेगा। टीचर की एक अपनी अहमियत है, उस्ताद के बगैर किताब बेकार होती है। वो किताब पकड़े आप कहते हैं पता नहीं कैसी है, इतनी बोझल, उस्ताद के साथ पढ़े इतनी इंजॉइंग लगती है, इतनी मज़े की लगती है। अल्लाह ने नबी सल्लम को एक उस्ताद बनाकर भेजा, कुरान भेज देता अल्लाह ताला खाली, काफ़ी था, घरों में रखें कुरान, आपके मेरे घर में क्या कुरान नहीं थे पहले। लेकिन वो कुरान जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं, क्या वो वही कुरान है जो घर बैठ के तफसीर पढ़ते हैं। और यहाँ लफ्ज़ देखे यतलू, पढ़ना, जिब्राइल ने अल्लाह से सुना, और जिब्राइल से मोहम्मद सल्लम ने सुना, और मोहम्मद सल्लम से सहाबा ने सुना, और सहाबा से आज हम सुन सुना रहे हैं। इधर एक और बात भी नोट करें, किताबों से इल्म नहीं मिलता। आप मुझे कहते हैं ना आप कहाँ से सुनाती हैं, तफसीरें कौन सी यूज़ करते हैं, मैं कहूँगी आप आ जाए क्लास के बाद, मैं आपको 10 तफसीरों के नाम देती हूँ, आप पाकिस्तान से मंगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। 10 नहीं, मैं तो आपको 20 के भी नाम दे दूंगी इंशाल्लाह, जिसको तलब है आ जाए। लेकिन वो 20 तफसीरें आपके टेबल पे पड़ी हों, आपके शेल्फ में पड़ी हों, और इनमें से एक एक करके आप ये लेसन 20 तफसीरों में से सुन लें, इल्म मिल सकता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। उस्ताद तो यूं चुन चुन के दिखाता है कि ये निकालना है, ये बताना है, ये इधर नहीं वो उधर नहीं, ये नहीं अभी चलना, ये नहीं वो नहीं, और आप पढ़ के तो परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से डील कर रही हूँ जो खुद किताबें पढ़ के भटके हुए हैं, और वो भटकना, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। बस ये कहूँगी कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल है। खुदरो पौधों की तरह कांटेदार झाड़ियाँ ऐसे लोग, अल्लाह के नबी के पास सहाबा बैठे, मस्जिद नबी में काम होता था, असाबे सुफा वहां के बैठते थे, कहाँ से हजरत अबू हुरैरा आए, कबीला दौस के गुलाम, दूसरे मुल्क से आए थे आपके पास पढ़ने, तो बैठ के पढ़ने की अहमियत है इसमें। तज़किया होता ही उस्ताद के साथ है, सीधी सी बात है, प्यूरिफिकेशन, सोच का तज़किया, अक़ल का तज़किया, आपके अकीदे का तज़किया, आप क्या बोलना, कितना बोलना, हर मामले में आप देखें ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं इसको इंग्लिश में समझाऊं तो मुझे बहुत इजी लगता है। आप केक बनाते हैं, कैसे बनाना है आप कहते हैं, हम सबको पता है, केक में मैदा डालते हैं, अंडे डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चलिए जाइए बना के लाइए। नहीं पता मैदा कितना, नहीं पता चीनी कितनी, ये नहीं पता टेम्परेचर कितना, पहले ज़्यादा कम, आखिर में वो केक बनेगा या पत्थर बनेगा एक। आप एक केक नहीं बना सकते रेसिपी को पूरा फॉलो किए बगैर, तो दीन को अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। आज हमारी उम्मत का ये रोना है, जिसने कह दिया ये नेकी है लेके चल पड़ते हैं बगैर रिसर्च किए। नहीं, अल्लाह कहता है जिस नेकी की रेसिपी तुम्हें मिले व्हाट्सएप पे, वाइबर पे, फेसबुक पे, तुम्हारे मैसेज में, आप उसको जल्दी से फॉरवर्ड कर दो, ये ना किया तो वो हो जाएगा, वो ना किया, उससे पहले एक दफ़ा चेक कर लो कि ये युअल्लिमुकुमुल किताब अवल हिक्मा पे आता है, नबी ने ये सिखाया कि नहीं सिखाया। आज हमारा इल्म भी सुना सुनाया ही हो गया, पहले लोग गाने शेयर करते थे, डायलॉग शेयर करते थे, फिल्में शेयर करते थे, अब दीन वाले लोग दीनी हदीसें शेयर करते हैं। मेरे पास एक क्लिप आया, तो एक मुबल्लिग थे, तो उन्होंने अपने फ़ोन से खोल के लोगों को दिखाया, एक हदीस थी कि इल्म की छत अबू बकर है, दीवारें उस्मान हैं, फर्श पता नहीं कौन है, और उसका दरवाज़ा अली है, اور نیچے انہوں نے حوالہ دکھایا کہ حدیث میں حوالہ لکھا ہوا صحیح بخاری فلاں فلاں. اب وہ حدیث آپ کو جو آئے گی تو آپ تو لفظ پہلے بخاری پڑھیں گے, 100% ٹھیک ہے. نیچے نام نمبر حدیث کا لکھا ہوا ہے, آپ جا کے چیک کرتے ہیں بخاری. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ میسج مجھے آیا ہے, اور جا کے چیک کر لیجئے پوری بخاری میں یہ حدیث کوئی نہیں ہے. آج اب ایک نیا شوشہ بے خوفی آ گئی نا, کیا لفظ کیا جہاں اتنی بات لکھی ہے اس میں لفظ بخاری لکھنا نہیں آتا لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ شیعہ نے یہ حدیث عام کر کے لوگوں میں حضرت علی کے فضائل کو بڑھانے کے لیے یہ حدیث عام کی ہیں. تحقیق کریں, اللہ آپ کو مجھے توفیق دے مرے گھروں میں کتابیں ہوں اور ہم اس کو لے کر چلیں. تو بہرحال بات مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. نیکی کتنی کب کہاں کرنی ہے. آپ کیک بنا رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے 6 انڈے, 1 کپ میدا, 1 کپ دودھ, 2 کپ چینی. تو آپ کہتے ہیں یہ بھی ڈال دوں یہ بھی ڈال دوں, آپ ساتھ ہی مرچیں ڈالنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے ارے بھائی مرچیں کیوں ڈال رہی ہیں آپ, ریسیپی میں تو نہیں لکھی ہوئی. تو آپ آگے سے بڑے پیار سے ادا سے کہہ دیں منع بھی تو نہیں کیا نا. چلو انہوں نے چینی ریسیپی میں مرچیں نہیں لکھی کیک کی, منع بھی تو نہیں کیا. اب مجھے بتائیے جب وہ مرچیں آپ ڈالیں گے تو کیک بنے گا. آج لوگ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں نا تو آپ انہیں کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کی بیویاں فوت ہوئیں آپ نے ان کے مرنے پہ یہ کیا, آپ کے بچوں کی شادی کی تو کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا. آج اب دیکھیے دین کی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے امت مسلمہ میں اور جو انڈیا پاکستان میں پکی ہوئی ہے, اس کا تو ٹیسٹ تو بڑا مزے کا ہوگا. ٹیسٹی دین, رنگ رونق اللہ, ہر موقع پہ کھانے حلوے مانڈوں کی باتیں. پر یو المکم الکتاب والحکمانی, وہ کہاں سے ملے گا, وہ اس قرآن سے مل رہا ہے آپ کو. آپ مجھے بھی ایک وقت آئے گا روک سکیں گے کہ پہلے ہمیں ذرا اس کا ریفرنس دے, کیونکہ آپ نے ہمیں خود ہی سکھایا ہے کہ ریفرنس دو بات کرو. تو علم کھیل نہیں ہے. میں اکثر ان لوگوں کو جو دین کو سنجیدہ نہیں لیتے نا, میرے دل سے ان کی عزت چلی جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, وہ کتنے دولت مند کیوں نہ ہو, وہ دنیاوی زندگی میں کتنے عقل مند کیوں نہ ہو, جو بندہ علم کی قدر نہیں کرتا نا, علم کو اس کا ڈیو حق نہیں دیتا, سیریس نہیں لیتا, میں کہتی ہوں یہ ہر وقت رسک پہ ہے, خطروں میں یہ بندہ. اس لیے ہمیشہ علم کو اہمیت دیں,